जब तक कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूर्णतः असक्त नहीं हो जाता, उसके अपने हृदय के भीतर परमात्मा को ढूंढते हुए निर्विशेष योगी बनने की संभावना होती है। ध्यानावस्थित तदगते में मनुष्य पश्यन्ति यम योगी न। यहाँ पर ओंकार जप की संस्तुति की गई है, क्योंकि दिव्य अनुभूति के प्रारंभ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप न करके मनुष्य ओंकार का जप कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र तथा ओंकार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ध्वनि अभिव्यक्तियां हैं। प्रणव सर्ववेदेशु, समस्त वैदिक वाङ्मय में ओंकार ध्वनि ही शुभारंभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओंकार के जप तथा हरे कृष्ण मंत्र के जप में यही अंतर है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप स्थान या आसन का विचार किए बिना किया जा सकता है, जिसकी संस्तुति भगवत गीता में की गई है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप स्थिर मासन मात्मना न चुच्छितम नाति नीचम शैलाज न कुशोत्तरम। योग अभ्यास के लिए मनुष्य क्या स्थान में जाना चाहिए और भूमि पर कुछ बिछा कर उसके पर मृग चर्म तथा मुलायम कपड़ा डाल देना चाहिए। आसन न तो अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा, इसे पवित्र स्थान में होना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र को कोई भी व्यक्ति स्थान या आसन के विचार किए बिना जप कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है, नियमित स्मरण न काल। हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के लिए आसन के विषय में कोई विशिष्ट आदेश नहीं है। नियमतः स्मरण न काल नामक आदेश के आदेश में देश काल तथा पात्र सभी समाविष्ट हैं। अतः कोई भी व्यक्ति देश तथा काल का ध्यान रखे बिना हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकता है। विशेषतया इस कलयुग में भगवद गीता द्वारा संस्कृत उपयुक्त स्थान खोज पाना कठिन है, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी स्थान में और किसी भी समय किया जा सकता है और इससे तुरंत ही फल मिलता है। फिर भी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए विधि विधानों का पालन किया जा सकता है। अतः जप के समय शरीर को सीधा रखा जाए, इससे जापक को सहायता मिलेगी, अन्यथा उसे नींद आ सकती है। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने संकेत दे दिया है। अज्ञानोत्विरन्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाका चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तन्मनभीष्टं आपितं येन भूतले स्वयंपाकरामयं ददाति शापदान्तिकं देहं श्रीकृतं श्रीचितपदकमं श्रीरूपं सागरजातं सागरगुणातां साधयितं सावधूतं परिगणयितं श्रीराधा
Thank you.
मैं माफी चाहता हूं क्योंकि बोलने का अभ्यास मेरा नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से बोल सकते हो और मैंने भगवत क्लास कभी इस आसन बैठ के दिया ही नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के पास कुछ कह सके तो ठीक है। आप लोगों की कृपा के बिना बन नहीं सकता, वैष्णव जन कृपा करे तभी कोई कुछ कर पा सकता है। प्रार्थना करूंगा आप लोग 30 श्लोक के इस अध्याय के विषय वस्तु हैं सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश। सुसंस्कृत मनुष्य कल्चर्ड है, अंग्रेजी में कल्चर्ड बोलते हैं सुसंस्कृत। इससे पहले इनकी शुरुआत कहां से हुआ? सुसंस्कृत जो मनुष्य हैं, मनुष्य के विषय में उपदेश दिए गए हैं कि ये कहां से शुरुआत हुआ है? तो कथा शुरू हुआ है वहां से, युधिष्ठिर महाराज की सभा से। उन्होंने जब नारद मुनि से प्रश्न, नारद मुनि से जब प्रह्लाद महाराज के विषय में सुने, तब उनके मन में प्रश्न जगा और उन्हें नारद मुनि से प्रश्न पूछा कि हम विषय लोग किस प्रकार इस संसार के इस समाज को लालन पालन करें, उस ज्ञान को बतलाए। तो यह शुरुआत होता है कब, कहां, कौन से अध्याय से? इसी स्कंद के 11वें अध्याय से शुरुआत होता है। जब युधिष्ठिर महाराज नारद से प्रह्लाद महाराज के गुणों को सुना, तब उनके मन में वर्णाश्रम धर्म के विशेष लक्षणों के विषय में जिज्ञासा प्रकट हुई। तब नारद मुनि ने अपनी बात छोड़कर भगवान नारायण के कथन उद्धृत किए, क्योंकि धार्मिक सिद्धांत प्रदान करने के लिए वे परम अधिकारी हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो वर्णाश्रम धर्म स्थापना करने के लिए, वर्णाश्रम धर्म क्या है? चार हम जानते हैं, चार प्रकार के वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो चार प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तीन वर्ण और आश्रम में रहकर जो आध्यात्मिक प्रगति किए जाते हैं, उनके विषय में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बतलाया। तो ब्राह्मण की कर्तव्य क्या है? पहले तो ब्राह्मण की कर्तव्य क्या है, क्या क्या गुणावली है, इनके विषय में बतलाए। फिर क्षत्रिय की बारे में बताए, फिर वैश्य शूद्र, और चार आश्रम में से ब्रह्मचर्य की क्या कार्य है, क्या करना चाहिए, गृहस्थ की क्या कार्य है, वानप्रस्थ और सन्यास की क्या कार्य है, इस विषय में बतलाते हुए विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए हैं जो आप लोग पहले सुन चुके हो। तो यहां तक आए हैं, तो अभी ये जो विषय कह रहे हैं ये कौन सा आश्रम के लोगों के लिए है? गृहस्थ आश्रम। ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए ये उपदेश दिए जाते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि हम लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते हैं, मगर यहां कहते हैं ओंकार ध्वनि से भी जप करना चाहिए। तो कब करना है? कहते हैं प्रभुपाद जी, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रारंभ में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के प्रारंभ में मनुष्य ओंकार का जप कर सकता है। और किस लिए किया जा सकता है? दिव्य अनुभूति प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण महामंत्र तथा ओंकार में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ध्वनि अभिव्यक्तियां हैं। फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करते हैं? ओम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या कारण है? इसमें बतलाए जो मैंने पढ़ के सुनाया आप लोगों को, ओम कर जब विशेष आसन में बैठ के करना चाहिए और उस पवित्र स्थान में, हर जगह में नहीं कर सकते। तो कलि युग में संभव नहीं है, ना ही पवित्र स्थान आपको मिलेगा कहीं भी और ना पवित्र आसन। तो विधि विधान को बिना अगर मंत्र जप करेंगे तो क्या होगा? निष्फल हो जाएगा, कोई फल मिलेगा नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलि युग के जीवों के लिए समय काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की विधि को ही चुना और हमें वही मंत्र जप करने के लिए परंपरा के अनुसार प्राप्त हुए हैं ये मंत्र और हम वही मंत्र इसलिए जपते हैं। हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ करना पड़ता है नहीं, कोई विधि विधान नहीं है। नियमित स्मरण न काल है, यहां कोई ऐसा देश या काल या स्थान इसी कोई नियम नहीं है। क्या नियम है? कि हमेशा कर सकते हो। कौन कौन कर सकता है? कोई भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, माताएं भी, पुरुष भी, कोई भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है। इसके लिए ना कोई नियम है, ना कोई विधि है, ना कोई विधान है, जिस कारण से गरीब जीव के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जप अति महत्वपूर्ण है। और ये जप करने से क्या होगा? इसमें फल तुरंत मिलता है, इसका फल तुरंत प्राप्त होता है। यहां लिखा है प्रभुपाद, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप किसी भी स्थान में और किसी भी समय किया जा सकता है और इससे तुरंत ही फल मिलता है। मगर ओंकार जप करने से तुरंत फल नहीं मिलता, बहुत समय बिताने के बाद आपके मन जब स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है उस ध्वनि से, तब दिव्य अनुभूति प्राप्त होता है, उसके बाद फल मिलता है। जो लोग ओम करके बैठ जाते हैं तो एक तो यह शहर में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका मन केंद्रित नहीं होगा, इतनी शोर शराबा में मन को केंद्रित नहीं कर सकोगे ओंकार ध्वनि की बात। तो वो कहां करते थे ऐसा जप? लोग उस समय कहां करते थे? एकांत स्थान में, पर्वत जंगलों में जाकर के, एकांत स्थान जहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, मगर ऐसे स्थान तो कलयुग में मिलना मुश्किल है, न जंगल है न एकांत है। तो यहां क्या है, सोरी सोर चारो, तो सोर को सोरी काट सकता है, नहीं क्या? हाँ, जैसे गर्मी किसी को लग जाए तो हमने अभी तो नहीं, मगर जब भक्त नहीं बने थे आपको भी पता होगा, दफ्तर में जाते थे तो क्या है, जाते ही गर्म गर्म चाय पी लेते, गर्मी से गया जाके चाय पी ले। तो उसे कारण क्या है, उसके रीजन है, वो रीजन है गर्मी से गर्मी को नष्ट करते, तो गर्मी से गए गर्म पिया तो आप जाते ही जो नींद आने वाला झांसा हो जाता था वो खत्म हो जाता, तो आप लोग नहीं पीना आप लोग गर्मी से आकर के यहां चाय मत पीना, क्योंकि यहां चाय मिलेगा ही नहीं यहां चाय नहीं मिलता, तो वैसा स्थिति भी नहीं है। तो कलयुग में क्योंकि शोर ही शोर है हर जगह में, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने शोर वाला मंत्र दिया है, जोर जोर से चिल्लाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इतना शोर में बाहर का फिर कहां सुनाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा तो आप ही का आवाज आपके कान में गूंजेगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीव के लिए ये हरि कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने की विधि बतलाई है। ओम शब्द के उच्चारण सत्ययुग में करते थे लोग, उसमें बहुत सारा विधि विधान है, हिमालय में या पर्वत में पवित्र स्थान ढूंढ करके उसमें पहले तो क्या करते थे, कुश की बिछावन, कुश नाम के घास होता है जिससे चटाई बनाते हैं बड़े, उसके ऊपर मृग हिरण का चर्म जिसमें बाल लगा हुआ है नरम होते हैं तो उसके ऊपर बिछा करके उसमें बैठते थे, फिर वहां बैठ के ओम का ध्वनि करते करते मन को पवित्र करने लगे, बहुत समय बीत जाता था उसमें, कितना समय लगता था कोई पता नहीं, कई तो कई हजार भी लग सकता था। तो उसके बाद जब दिव्य अनुभूति, कोई प्रकाश दिखता था ना क्या दिखता था, कुछ ऐसा सुनने को आता है, कहते हैं लोग जो कोई प्रकाश दिख जाता है तो दिव्य अनुभूति प्राप्त हो जाता था, तब उन्होंने उसे मन को केंद्रित करके धीरे धीरे भगवान के निर्विकार छवि को हृदय में प्रकट करते करते उसमें लीन हो जाता। मगर वो सिस्टम वो पद्धति इस समय उपयुक्त नहीं है, समय के अनुसार काल के अनुसार स्थिति के अनुसार वैसा नहीं कर सकते, ना ही मन आपके स्थिर रहेगा, ना ही आप उस ओंकार ध्वनि को पवित्र ढंग से जप कर सकते हो, ना ही वैसा व्यवस्था हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस विधान को बदल करके कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए कहा है। ऐसे भी हम योग संपन्न करने के लिए पवित्र स्थल जाते हैं, जैसे वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, फिर प्रयाग जाते हैं, तीर्थ स्थान, ये पवित्र स्थल है। इससे पहले भी इसके वर्णन किए गए हैं कि पवित्र स्थल कहां कहां है, किस किस जगह में जाकर के आप भगवान की उपासना आराधना पूजा दान यज्ञ कर सकते हैं। तो कर्मकांड के लिए तो बहुत सारा विधान है, हम लोग चूंकि कर्म कांड ही नहीं है, हम कौन से कांड में हैं? ज्ञान सॉरी हमारा दो स्थितियां हैं, एक तो ज्ञान की, दूसरा भक्ति की। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, तो हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। यहां पर कहे हैं तो भगवान के ये जो उपासना है, मंत्र जप हम करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इसलिए करते हैं मन पर विजय प्राप्त करने के। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते मन के अंदर में विजय जब प्राप्त कर लेते हैं तो हम क्या होता है, दूषित संगत से मुक्त हो जाते हैं और फिर अपने शरीर के पसंद के लिए जितना जरूरत होता है उतना जीवन यापन के लिए भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं और भगवान के नाम में मन को पूरा पूरी निवेश कर देते हैं। वो धीरे धीरे आगे के आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए बढ़ते हैं। यहां पर प्रभुपाद कहे हैं विद्यात्माद्वैत जो परम सत्य को जानते हैं, इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान का घर पुकारते हैं। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, आपको तो मालूम होना चाहिए, भगवत गीता में इसके ऊपर में लिखा है कि भागवत में पहला स्कंध में है। तो ब्रह्म है जो हम निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, परमात्मा जो हर जीव के अंदर में निवास करते हैं और भगवान तो स्वयं भगवान है, सारी एक ही वस्तु है मगर उपासना के स्थिति के अनुसार अलग अलग रूप में प्रदर्शन करते हैं। जो लोग ब्रह्मोपासक हैं, निराकार ब्रह्म को उपासना करते हैं, जो भगवान के अर्चक विग्रह की अर्चना नहीं करते वो क्या करते हैं, भगवान के निराकार स्वरूप को मन में चिंतन करते हैं, एक जगह में बैठ के आंख मूंद करके निराकार ब्रह्म की ज्योति ब्रह्म को देखने में प्रयासरत करते हैं और फिर धीरे धीरे उसके हृदय में वो ज्योति प्रकाश हो जाता है, फिर उसी में लीन हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक में निवास करते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्योति है, वहां क्या करते हैं, वहां भगवान की उपासना करते हैं। इसी तरह एक जगह में बैठ करके योग में बैठ जाते हैं और उसी निराकार ब्रह्म के उपासना में मग्न रहते हैं। परमात्मा रूप में भगवान हर जीव के अंदर में है मगर उसको हम देख नहीं पाते, तो उसको देखने के लिए विधि क्या है, उस परमात्मा को जागृत करना पड़ता है। हमने कथा सुने भागवतम में कि एक पेड़ में दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करते रहते हैं, परमात्मा हर क्षण उसको सचेत करते रहते हैं। कोई भी काम करने से पहले जैसे ही जीवात्मा इच्छा प्रकट करते हैं, परमात्मा तुरंत उनको उस विषय के गुण अवगुण दोनों के बारे में सचेत कर देते हैं। और सतर्क करते हैं कि ये काम नहीं करना, ये काम करना। जब परमात्मा के निर्देश को हम बिना सुने, उनके मना की करने के बावजूद भी उस कर्म में लग जाते, अग्रसर हो जाते, तब हमारा अंदर में क्या होता है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो भौतिक भोग की कामनाएं बढ़ते जाते हैं और हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं। परमात्मा हमें निर्देश तो एक बार देते हैं, मगर कोई प्रेशराइज नहीं करते कि क्यों गया, क्यों जाता है। वो बतलाते हैं ये अब गुण है, ये गुण है, ये करोगे ऐसा फल मिलेगा, नहीं करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये सचेत करते हैं। मगर जब हम उस निर्देश को मानते नहीं, तब हमारा जीवन में अघटन घटित होता है, पतन हो जाते हैं, हम विभिन्न समस्या में ग्रसित हो जाते हैं। मगर जो व्यक्ति उन परमात्मा के निर्देशन को, आदेश को, उपदेश को जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तब वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा हर क्षण हर जीव के अंदर में उपदेशक के रूप में निवास करते हैं। और भगवान तो स्वयं, हम भगवान के अक्षय विग्रह जो सामने हैं, उनको देखते हैं, सजाते हैं, भोग लगाते हैं, उनका आरती करते हैं, उनके स्वरूप को हम अच्छी तरह से देखते हैं। भगवान के अर्च विग्रह की जो हम उपासना करते हैं, ये किस लिए करते हैं? जो भगवान स्वयं हैं, गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, उन्होंने हमें वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते उसको दर्शन करने के लिए, मगर उन्होंने कृपा करके यहां विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं। अगर हम इनको उसी ढंग से, उसी विधि से अर्चना करें, तो भगवान स्वयं यहां उपस्थित होकर हमें वही फल प्रदान करेंगे। इसीलिए स्वयं भगवान और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के विषय में पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाते जब तक कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाता, उसके अपने हृदय के भीतर परमात्मा को ढूंढते हुए निर्विशेष जोगी बनने की संभावना होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सामने हैं, उनको हम जब तक हृदय में स्थापित नहीं कर लेते हैं, तब तक क्या कहें, परमात्मा को ढूंढते रहते हैं अंदर। और जो निर्विशेष योगी हैं, बनने की संभावना होती है, तब हम उस स्थिति में निर्विशेष योगी बन जाते हैं। यहां पर एक श्लोक बताए हैं, ध्यानावस्थित तत्गते न मनुष्य पश्यन्ति यम योगिन योगीगण, उसी तरह से हृदय के अंदर में परमात्मा को चिंतन करते हैं। तो यहाँ ज्यादा कुछ कहे नहीं है प्रभुपाद ने। यहाँ पर ओंकार जप, हरिकृष्ण महामंत्र जप, ये की कहे हैं और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये भी बताएं। मगर कलि युग में हरिकृष्ण महामंत्र ही श्रेष्ठ है, इसी को जप करना चाहिए, क्योंकि ओंकार जप हम नहीं कर सकते, वो परिस्थिति और स्थिति अभी कलि युग में संभव नहीं है हमारा लिए। वैसा पवित्र स्थान भी नहीं है और हम भी पवित्र नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के निर्देश को मानते हुए हमें उनके शिक्षा के अनुसार हमारे आचार्यों के मार्ग, जो मार्ग दिए हैं, उनके अनुसार चल करके विधि विधान को पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहिए, यही उद्देश्य है इसमें और यही आदेश हमें दिए हैं। हरे कृष्णा। तो कुछ कहना है आप लोग को, हमें सुनाएं इसके विषय में। इतधाम प्रभु कुछ कहिए। गोपाल ने जो कहे हैं कि प्रणव मंत्र जो ओंकार ध्वनि है हर कृष्ण मंत्र दोनों जप करने के लिए जप कर सकते हैं, मगर क्यों कर सकते हैं जबकि हमें हर कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कहा गया है, तो ओंकार ध्वनि जप करने के लिए क्यों कहा गया है? तुरंत फल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से तुरंत फल नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ में विधि विधान को भी पालन करना पड़ेगा। फल तो मिलेगा तुरंत, तुरंत फल तब मिलेगा जो फल के लिए आप प्रार्थना करते हैं, जिस फल की कामना के लिए आप मंत्र जपते हैं वो फल मिलेगा। मगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के भी विधि विधान है, उसमें क्या करना पड़ेगा? चार नियम पालन करना पड़ेगा, नाम अपराध से बचना पड़ेगा, धाम अपराध से बचना पड़ेगा, वैष्णव अपराध से बचना पड़ेगा। ये सारे चीज फॉलो करने के बाद जप करेंगे तभी मिलेगा तुरंत फल। ऐसा नहीं हरे कृष्ण महामंत्र जप किया फल मिल गया, ऐसा नहीं होता, उसके अंदर में बहुत कुछ और है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के साथ साथ भगवान ने ये भी बताए हैं कि जो व्यक्ति जो भक्त भगवान की जप करने के इच्छुक हैं और इस चीजों से अपने आप को बचाते हुए जप करता है उसको तुरंत फल मिलेगा। तुरंत फल में देखिए कई लोग, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कई लोग अशांत होते घर परिवार दुनियादारी से दुखी हो जाता है, मन भटकते रहते हैं, दुखी रोते रहते हैं हमेशा, तो भटकते भटकते मंदिर में आ जाते हैं, यहां कुछ देर बैठे रहते हैं, कीर्तन सुनते हैं, सुनते 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 वो भी कीर्तन करने लगते हैं, तो जैसे ही कीर्तन करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे उसका अस्थिर मन चंचल मन शांत हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो हर रोज मंदिर आकर यहां बैठ जाते हैं, घर जाते परेशान हो जाता है तो घर छोड़कर के यहां पे बैठ जाते हैं एक दो घंटे। ऐसा प्रैक्टिकल बात है, हमने ये तुरंत फल मिला ना, किसी डॉक्टर के पास जाए तो कोई दवाई नहीं मिलेगा आपके ऐसे, मगर यहां कुछ नहीं करना, सुना और मंत्र को जप किया तुरंत फल मिल गया, आप अपने आप शांत हो गए। इसी प्रकार और भी विभिन्न प्रकार के फल की कामना से लोग आते हैं, भगवान कहते हैं मेरे पास में चार प्रकार के लोग आते हैं, आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। दुखी लोग आते हैं धन की कामना के लिए आते हैं, ज्ञानी जो विद्वान हैं जो हमें भी तो कुछ ज्ञान प्रदान कर सकते हैं ऐसे भी आते हैं, और जिनके मन में बहुत सारा जिज्ञासाएं हैं मगर समाधान कहीं नहीं होता वो भी आते हैं। तो जिस भाव से जो आएगा उसको भगवान के नाम जपने से वो फल प्राप्त कर सकते हैं। और कोई कुछ कहें? थैंक यू, धन्यवाद आप सबको, हमारे टूटी हुई वाणी से आप लोग